अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स को क्यों या एक ही फिक्र को क्यों फॉलो किया जाए, इसके बारे में बस सरसरी तौर पर कुछ बात कह दी जाए। तफसील इंशाल्लाह ताला वो वीडियो में आप देख लीजिए। असल मकसद तो ये है कि अल्लाह सुभान व तआला हमसे जो चाहते हैं उस पर हम अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए उनकी शरह की, तशरीह की, वजाहत की उसकी, और उम्मत में वो चीज़ें पहुँच गई। सहाबा कराम ने उसको सीना बसीना अगली नस्लों तक पहुँचाया। उस ज़माने में यही होता था कि जिसको जो सहाबी इल्म वाला मिल जाता उससे वो मसला पूछता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 13-14 लोगों को खाली इजाज़त थी फतवा देने की, कि वो फ़कीह सहाबा थे। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती चली गई। फिर माशाल्लाह जब एक बड़ी तादाद हो गई और ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए, तो हर जगह लोगों का मामला ये हुआ कि अपने अपने ख़ास अंदाज से वो चीज़ों को जो देखते थे और कुरान और हदीस को सामने रख कर एक फ़ैसला करते थे, तो एक ख़ास मिजाज हर हर जगह के हिसाब से बनता चला गया। फिर वक्त का भी आगे पीछे था कि कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त देखा, आपको एक ख़ास अमल करते हुए पाया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को अगर छोड़ के कोई और अमल किया, तो बाद के कुछ लोग जो आए उन्होंने उनको उस हाल में देखा। तो अब ये दो अमल वाले लोग अपने अपने इलाकों में जब पहुँचे, तो अपनी ही जो बात उन्होंने देखी थी उस पर अमल किया। चौथे अल्लाह सुबहान व तआला ने यह चाहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें जारी रहें, तो उम्मत में ये एक ऐसी फ़जा हो गई कि कुछ लोगों ने जो जैस चीज़ जैसे समझी उसको लिया, दूसरों ने दूसरे तरीके से लिया। और ये बाज़ औक़ात इसलिए भी होता है कि इस चीज़ को समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट एंगल से लोग चीज़ों को देखते हैं। मिसाल उसकी बहुत मारूफ सी है जो बनी कुरैज़ा का वाक़े में है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई असर की नमाज़ न पढ़े मगर ये कि बनी कुरैज़ा में पहुँच कर। अब इसका मतलब सहाबा के दो ग्रोहों ने दो तरह समझा। सारे लोग चल पड़े, थकावट थी, जानवर भी थके हुए थे, एक महीने का पूरा मुहासरा किया था दुश्मनों ने, उसके बाद अब आगे जा रहे थे, तो थकावट और कमज़ोरी की वजह से ताखीर हो गई। जब वो रास्ते ही में थे कुरैज़ा पहुँचने से पहले ही, तो पता चला कि जनाब सूरज ग़ुरूब होने का वक्त आ गया, असर की नमाज़ पढ़ी नहीं है। तो सहाबा ने फिर तस्करा किया आपस में कि भाई असर की नमाज़ का वक्त था, हमें असर पढ़ लेनी चाहिए। तो दूसरों ने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि असर बनी कुरैज़ा में पढ़ना, हम तो वहीं जाके पढ़ेंगे। तो पहले गुरु ने कहा कि भाई आपका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप फ़र्ज नमाज को निकाल दें, बल्कि मतलब ये कि इतना तेज़ी से चले जाओ कि वहाँ पहुँच जाना, असर तुम्हें वहाँ पर मिल जाए। अब चूँकि हम लेट हो गए हैं, तो उसका यह मतलब नहीं कि हम नमाज निकाल दें, जबकि आप नमाज की इतनी ताकीद हमें करते रहे हैं। तो इस बुनियाद पर सहाबा के दो ग्रोह हो गए, एक ग्रोह ने वहीं असर पड़ी, एक ने बाद में वहाँ काफ़ी ताखिर से मगरिब के बाद किसी वक्त जाके पड़ी, गोया नमाज कज़ा हुई। लेकिन दोनों के नज़दीक असल फोकस ये था कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना है जैसे हमें समझ में आई है। इस बुनियाद पर जो है वो जब इन्होंने बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा फरमाया, तो आपने इरशाद फरमाया कि तुमने भी ठीक किया और तुमने भी ठीक किया, असब तुम तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, क्योंकि तुम दोनों ने शरीयत की मंशा जानने के लिए अपनी तगोदौ की, मेहनत की, और जो बात तुम्हें समझ में आई तुमने उस पर अमल किया। तुम क्वालिफाइड और स्कॉलर आदमी हो, आलिम आदमी हो, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा करना जायज़ होया। ये यानी उससे बात निकलती है। ये क्यों निकलती है ये बात, हालांकि हदीस में ये अल्फाज नहीं जो मैंने आखिर में कहे, ये बात इसलिए निकलती है कि उसी के कुछ अरसे के बाद, बल्कि कुछ आगे पीछे ये वाकया जो दूसरा हुआ, जिसमें सहाबा में से कुछ लोग एक ख़ास मुहिम पे भेजे गए, और उनमें से एक सहाबी को कुछ चोट लग गई सर में, जिसकी वजह से शरीर बुखार वगैरह हो गया और कमज़ोरी हुई। तो उस बुखार तकलीफ की वजह से उनकी हालत काफ़ी गैर हो गई, और सुबह जब वो उठे तो उनको वेट ड्रीम हुआ हुआ था, इहतलाम जिसे कहते हैं। तो उन्होंने फिर सहाबा से कहा कि भाई मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है और ये फजर का वक्त है, मुझे फजर भी पढ़नी है और गसल मुझ पर वाजिब हो गया, तो मैं क्या करूँ, क्या कोई ऐसी सूरत है कि मैं गसल न करूँ, क्योंकि जिस तालाब में हमें वजू करना पड़ेगा या गसल करना पड़ेगा, ये तो बड़ा शदीद ठंडा पानी है, और मुझे तो उसको देख के ऐसा खौफ आ रहा है कि ये मेरी जान ले लेगा, तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, गोया उनको सेप्टिसीमिया हो गया होगा ऐसा महसूस होता है। बहरहाल जो सहाबा थे वो फ़कीह साहबा नहीं थे, उन्होंने आपस में फिर मशवरा करके कहा कि नहीं भाई हमें तो कोई और बात नहीं मालूम है, यही बात मालूम है, तुम कूदो। और उनको बस पानी के अंदर जबरदस्ती करके कहा कि गुसल करो। तो उन्होंने गुसल जब करने के लिए वो कूदे तो उसकी शिद्दत से बर्दाश्त उनसे नहीं हुई और इंतकाल हो गया उनका। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की बात इन लोगों ने बाद में पहुँचाई तो आप बहुत नाराज़ हुए और बहुत गुस्सा किया आपने, और आप मुस्तकिल ये कहते रहे कि तुमने उस सब ने मिलकर उसको मार दिया, अल्लाह तुम्हें मारे, यानी बद्दुआ फरमाई आपने, बहुत शदीद नाराज़ हुए इस मामले में। और फिर आपने आखिर में जुमला बयान फरमाया जो बहुत ही कीमती है, आपने फरमाया कि इन शिफाउल अय अस्सुआल, कि जहालत का इलाज सवाल करना है। इससे ये नुक्ता निकला कि जो लोग क्वालिफाइड ना हो उनके लिए अपनी मर्जी से कोई फैसला करना नहीं है बल्कि अहले इल्म की तरफ रुजू करना है। इसीलिए कुरान उलुल अमर का तस्करा करता है कि उनकी तरफ पहुंचो और अपने मामले को उन लोग तक पहुंचाओ जिनके पास इल्म है ताकि वो उससे इस्तिंबात करके तुम्हें समझा दें। बहरहाल तो लोग उलमा के पास जाते, सवालात करते, उनके जवाबात उनको मिल जाते, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून पर अमल करते, आज इससे पूछ लिया कल उससे पूछ लिया तो कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन बाद में लोगों के जब तकवा में भी फ़र्क आने लगा, दुनियादारी भी बढ़ गई और फिक्र आखरत भी कम हो गई, तो ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता जंगालूद होने लगता है, नए नए लोग भी दीन में आने लगे। तो 250-300 साल के बाद जाकर जब लोगों ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए कि इस फकीर की ये राय होगी, इसका मामला ये होगा, कुछ चीज़ें इधर से समझ में आ रही हैं, तो पिक एंड चूज करना शुरू कर दिया। अब कुरान ने इसको शिद्दत के साथ मना फरमाया, फरआई तमन तखद इलाहु हवा, कि तूने ऐसे शख्स को देखा कि जो अपने नफ्स को अपना खुदा बनाए बैठा है, माबूद बनाए बैठा है। तो इस बुनियाद पर नफ्स की इत्तबा हराम है, तलाही जिसे कहते हैं, और नफ्स परस्ती की गुंजाइश नहीं है शरीयत में। तो जब नफ्स मोटे हो गए और फिक्र आखरत कम होती गई तो उलमा ने उस वक्त इंतज़ामी तौर पर यह सूरत सामने रखी और उम्मत को बचाने के लिए फैसला किया कि भाई अब लोगों को एक ही इमाम की तकलीद पर पाबंद कर दो, वरना अपनी मर्जी से वो पिक एंड चूज करेंगे तो अपने आप को भी तबाह करेंगे और दूसरों को भी तबाह करेंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि इनके लिए एक गाइडलाइन हो, बस एक ही गाइडलाइन को फॉलो करें, वरना ये कभी यहाँ की या कभी उस मुल्क की या कभी उस फील्ड की गाइडलाइन लेंगे तो कुछ ना कुछ मसाइल उसमें आते जाएंगे। तो ये इंतज़ामी मसला था, लेकिन बाद में उसके फवायद को सामने रखा गया तो उससे बहुत खैर फैली, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में बहुत ज़्यादा इससे रहमत रही। और इसको सामने रख के फिर उम्मत ने इस पर गोया इजमा ही कर लिया कि अब इसी तरीके से ठीक है कि एक ही स्कूल को फॉलो किया जाए, इल्ला ये कि कोई आदमी आलिम दीन है, इल्ला ये कि उसके पास इतनी फिक्र आखरत मौजूद है और वो समझता है कि वो अपने नफ्स को जानता है, नफ्स की शरारतों को पहचानता है, अब वो इंशाल्लाह पिक एंड चूज नहीं करेगा बल्कि एहतियात पर अमल करते हुए अपने बारे में बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो सुपरविजन में स्कॉलर्स की चलेगा। तो ऐसे शख्स के लिए भी गुंजाइश है कि वो तकलीद मुतलक न करें, तकलीद शख्सी न करें बल्कि तकलीद मुतलक पे रहें। लेकिन बहरहाल हमारे आपके लिए, आम लोगों के लिए इसी में खैर है कि एक ही स्कूल में लगे रहें। अब इस सवाल के भी जब सारे ही हक पर हैं तो हम क्यों इस पर इसरार करें कि एक ही स्कूल में हम अपनी सारी व्यूज़ देखें और फतवे लें। बस वही वजह है उसकी कि जब हम ये कहते हैं कि चारों आइम्मा बरहक हैं जिनके स्कूल कोडिफाइड होकर हम तक पहुँच गए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि चारों की चारों हर हर मसले में जो राय होंगी वो सब भी ठीक है। ज़ाहिर बात है ये नहीं हो सकता कि एक मसले में राय ये भी ठीक हो और वो भी ठीक हो जबकि दोनों आपस में मुतज़ाद हों, या तो ये राय ठीक होगी या वो राय ठीक होगी, या तो रफ़ा दैन करना अफजल होगा या रफ़ा दैन न करना अफजल होगा, दोनों कैसे हो सकते हैं ठीक। लेकिन शरीयत इससे कंसर्न नहीं है कि दोनों में से राय कौन सी बेहतर हो या दूसरी बेहतर हो या न हो, क्योंकि मुज्तहिद के लिए हुक्म यह है कि अगर वो फैसला करे और फैसला ठीक हो जाए उसका तो उसको डबल अजर मिलता है, दोहरा अजर मिलता है, और अगर गलती हो तो एक मिलता है। लेकिन आम आदमी को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस मामले में फैसला करे। तो जब हम ये कहते हैं कि सारे बरहक है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सारे हक पर हैं, किसी भी एक के रास्ते पर आप चल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसका ये मतलब नहीं होता कि हर हर राय में सारे के सारे ठीक हैं, राय गलत और सही होगी, या तो किसी की सही होगी या किसी की गलत होगी, लेकिन गलत होने वाले को एक सवाब मिलेगा, सही राय वाले को डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। तो अब आप कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी राय किसकी ठीक है, ये तो आप अपने इल्म की बुनियाद पर कर सकते थे, या अगर इल्म नहीं है तो फिर तो आपके पास सिवाय फॉलो करने का कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए ताकि हम नफ्स की पुजारी ना बन जाएं, ये फी जमाना लाजमी है कि एक ही स्कूल में रहा जाए ताकि हम अपने आप को भी फितने से बचा लें। और आप नोट कीजिए ना कि आप एक फिक्र के हवाले से जितने मसाइल हैं क्या उनको मास्टर कर चुके हैं। हम तो सारे स्कूलों की कुछ ना कुछ व्यूज़ बयान बीच में कर देते हैं, आम हालात में लोग कभी ये मसले दूसरों के नहीं बताते और वही ज़्यादा बेहतर रास्ता है। लेकिन चूँकि हम पढ़े लिखे लोगों का जहन ज़रा सा इस हवाले से इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता और हमारा ख्याल ये होता है कि हम बड़े अल्लामा हैं और हमें सब बातें समझ में आ जाएंगी, इसीलिए सारी बातें सुनना चाहते, तो हमने ये तरीका पिछले 15 साल से अख्तियार कर लिया है कि दूसरे स्कूलों के व्यूज़ भी बताते हैं। तो फिर बाद में थोड़े अरसे के बाद लोग खुद कंफ्यूज होकर आके कहते हैं कि भाई हमें तो एक ही स्कूल का बता दें, क्योंकि अब ये याद नहीं आ रहा कि कौन से स्कूल का कौन सा था व्यू। तो फिर जब उनको ये बात समझ में आ जाती है और वो नॉर्मल हो जाते हैं इस हवाले से, इलाज गोया उनका हो जाता है, तो फिर उनके लिए यही कहते हैं कि भाई अब एक स्कूल की राय पहले पढ़ के मास्टर तो कर लो, फिर आगे देखते रहना। तो बहरहाल एक स्कूल में रहने में आफियत ही आफियत है और खैर है। अगर जो कोई बहुत ही आलिम किस्म का आदमी हो तो वो खुद अपनी मर्जी से कोई राय बनाए तो उसका हक है उसको। आम आदमी को इससे बहुत एहतियात करना चाहिए। जब हम आलिम कहते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इमाम शाफ़ी को फॉलो करने वाले हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी हैं, जो कि बुखारी शरीफ के सबसे बड़े शारे हैं, अल्लामा नववी हैं जिनका हदीस में बहुत ऊंचा मकाम है, इसी तरीके से ताजुद्दीन सुबुकी हैं, इमाम ज़रकशी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इमाम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले दुल्ला इब्न मुबारक हैं, अल्लामा शामी हैं, इमाम हसकफ़ी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इमाम कुदूरी, इमाम शुरुम बुलाली, तो ये इतने बड़े बड़े उम्मत के जो गादरी उलमा हैं, इन लोगों का एक स्कूल को फॉलो कर लेना, अपने आप को मुनहसर रखना उसमें इस बात की अलामत है कि वो भी इस बात से घबराते और परेशान होते थे कि हमने अगर अपनी मर्ज़ी से इश्तेहाद किया तो शायद हम इधर उधर हो जाएँ, तो बेहतर ये है कि एक स्कूल में रहा जाए। अपनी राय उन्होंने रखी कहीं कहीं, लेकिन बिलुमूम अपने आप को एक दायरे में ही महफूज रखा। तो ये हिफाजत के लिए है, ये सेफ्टी है, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये जहन में रहे कि ये सारे सिर्फ फ़ुरूइयात से मुतालिक उमूर के अंदर है, जो चीज़ें उसूलियात हैं उसमें तो किसी की तकलीद करना जायज़ नहीं है। या आप किसी से ये पूछ के नहीं मालूम करेंगे कि इल्म हासिल करेंगे कि अल्लाह एक है कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी हैं कि नहीं, इसमें आपको खुद यकीन होगा और आप उसी पर अमल करेंगे, किसी के कहने से आप उसको तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसूलियात दीन में से है। फ़ुरूइयात यानी सब सीजरी जो इशूज़ हैं, टर्शरी या सेकेंडरी इशूज़ जो है, उन इशूज़ में आपको किसी स्कॉलर का पूछना पड़ता है, उससे मालूम करना पड़ता है। फंडामेंटल्स के अंदर, फाउंडेशंस के अंदर आपको किसी की तकलीद नहीं करनी, सिर्फ कुरान और हदीस में जिस तरह से है वो मालूम करना है, तो वो वहाँ तकलीद नाजायज, यहाँ तकलीद लाजिम। उम्मीद है इससे कोई बात वाजी हुई होगी। जैसा कल्लाहु खैर।